अध्याय का शीर्षक है श्री कृष्ण के गुण। तो ये 22वां गुण हम लोग आज पढ़ रहे हैं, आत्मसंयमी वशी। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में कर लिया है वह वशी अथवा जितेंद्रिय कहलाता है। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कृष्ण की 16,000 पत्नियां इतनी सुंदर थीं कि उनकी मुस्कान तथा लज्जा से शिवजी जैसे महान देवताओं के भी मन मोहित हो जाते थे, किंतु वह पत्नियां अपने आकर्षक स्त्री आचरण से कृष्ण के मन को तनिक भी विचलित नहीं कर सकी। कृष्ण की हजारों पत्नियों में से हर एक ये सोचती थी कि श्री कृष्ण उसके स्त्री सौंदर्य पर मोहित हैं, किंतु बात ऐसी नहीं थी। अथवा कृष्ण समस्त इंद्रियों के नियामक हैं और भगवद गीता में उन्हें ऋषिकेश संबोधित करके इसे स्वीकार किया गया है। तो भगवान आत्मसंयमी हैं, ऐसे भगवान को हम क्या कहते हैं, ऋषिकेश कहते हैं। और ऐसे ऋषिकेश को जो हम अपने इंद्रियों को देते हैं तो हमारी इंद्रियां भी वश में आती हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि मन को काबू में नहीं किया जाता है, इंद्रियों को काबू में नहीं किया जाता है, इंद्रियों को ऋषिकेश के चरणों में अर्पित कर देते हैं, उनके हाथ में ये इंद्रियां दे देते हैं। जैसे कोई घोड़ा चला रहा है और घोड़ा चलाने वाला उसके हाथ में लगाम है और लगाम उसे ठीक तरह से पकड़ा हुआ है तो घोड़े जो हैं इधर उधर नहीं भागेंगे। आपने कई बार उदाहरण सुना होगा, देखा भी होगा। तो इसी तरह से हमें इन इंद्रियों को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए, खासकर मन को। सवई मनः कृष्ण पदारविंदे। और जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम भी गोदास से गोस्वामी बन सकते हैं। भगवान तो आत्मसंयमी है ही, क्योंकि भगवान क्या है, विभू है, लेकिन हम लोग क्या है, अणु हैं। भगवान के लिए ये कार्य कोई असंभव नहीं है, उनके लिए बहुत सरल बात है। लेकिन जीव के लिए, जो तटस्था शक्ति जीव है, जो माया के प्रभाव में आ जाता है, उसके लिए इंद्रियों को वश करना बहुत ही कठिन कार्य है। सामान्यतः ये संभव नहीं है, लेकिन इन्हीं इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो इंद्रियों को वशीभूत में किया जा सकता है, क्योंकि इन इंद्रियों से परे क्या है, मन है, और मन से परे क्या है, बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर क्या है, अहंकार, और अहंकार से ऊपर क्या है, आत्मा। ठीक है ना। तो ये बातों को हमें बड़े अच्छी तरह समझना है। तो बुद्धि के द्वारा मन को काबू में किया जाता है, लेकिन ये बुद्धि हमें प्राप्त होगी स्वयं भगवान से या उनके प्रतिनिधि से, शुद्ध भक्तों से। तो शुद्ध भक्त जब हमें भगवान की सेवा में लगाते हैं, उनके मार्गदर्शन में हम चलते हैं, तो हमारे अंदर भी ये गुण आ जाते हैं, आत्मसंयमी। जैसे कि हमने सुना पहले कि जीव भी 50 दिव्य गुण पुनः जागृत कर सकता है, जो मायाबद्ध जीव है, 50 दिव्य गुण, अधिक से अधिक। नित्य परिकर जो है, नित्य पार्षद जो है, उनके पास 55 दिव्य गुण होते हैं, लेकिन एक साधन सिद्ध जीव जो है वो अधिक से अधिक 50 दिव्य गुण जागृत कर सकता। तो हमारे पास भी आंशिक रूप में ये गुण आता है, ये नहीं कि भगवान जितने हम लोग आत्मसंयमी हो जाएंगे। जिस तरह से बद्रिका आश्रम में जब नर नारायण ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए क्या किया, इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, लेकिन जब भेजा अप्सराओं को तो नर नारायण ऋषि ने क्या किया, उन्हें अपनी इच्छा शक्ति से और सुंदर स्त्रियां प्रकट कर दी, जिससे अप्सराएं भी जो है अपने आप से उनको घिन होने लगी और वहां से वो चले गए। तो ये मतलब वहां ये भी वर्णन है, नर नारायण ऋषि को छोड़कर कोई अन्य ऐसा जीव नहीं है जिसके ऊपर माया का प्रभाव ना पड़ा हो। हाँ ये बात सही है कि जहां तक ब्रह्मा जी की बात है, शिव जी की बात है, इनके ऊपर हम जो प्रभाव देखते हैं तो वो प्रभाव योग माया का होता है, महामाया का नहीं होता। वो तो उनको केवल शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए भगवान ऐसी परीक्षा में डालते हैं, लेकिन सामान्य जीव जैसे हम लोग हैं, हम जैसे जीव के ऊपर तो महामाया का पूरा प्रभाव पड़ा रहता है। और इस माया से बचने के लिए बहुत ही हमें तपस्या करनी पड़ती है। और क्या तपस्या है? तपस्या ये है कि वो गुरु जो भगवान की सेवा में तत्पर हैं, उनके मार्गदर्शन पर चलना होता है, तभी ये संभव है। जब तक हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, तब तक हमारी इंद्रियां जो हैं, खासकर ये मन जो है, हमें तंग करता रहेगा। भगवान पूर्ण शरणागति चाहते हैं, इसलिए गीता भगवान कहते हैं मामेव ये प्रबद्यन्ते मायाम एतान तरन्ति ते देवैः शगुणमयी मम माया दुरतया। ये मेरी माया जो है, भगवान कहते हैं ये बहुत ही कठिन है इसको पार करना, लेकिन जिन्होंने पूरी शरण ली है वो बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। शरण कैसे लेंगे? हम शुद्ध भक्तों की शरण लेंगे, जो आत्मसंयमी है, जो तत्परता से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर बताई जा रही है। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि शिव जी के ऊपर भी कामदेव का प्रभाव हुआ, या ब्रह्मा जी का भी हम देखते हैं कि किस तरह से वो अपने ही बेटे की ओर भागे। तो ये सब देखकर हमें विचलित नहीं होना चाहिए ये सोचकर कि उनके ऊपर भी माया का प्रभाव पड़ा है। नहीं, ये भगवान की अपने ही व्यवस्था है उनके लिए, उनके ऊपर महामाया का प्रभाव कतई नहीं पड़ सकता है। सृष्टि के प्रारंभ में ही भगवान ने ब्रह्मा जी को ये आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया कि आपके ऊपर कभी भी रजोगुण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि आपको रजोगुण के माध्यम से सृष्टि करनी होगी, लेकिन रजोगुण आपको कभी प्रभावित नहीं करेगा। तो ब्रह्मा जी मुक्त पुरुष हैं, आचार्य हैं। इसे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें ये गलती नहीं करना है, बल्कि ये नहीं सोचना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने भी किया इस तरह से, शिव जी ने भी किया तो हम भी ऐसा करें, बल्कि ये शिक्षा लेनी चाहिए कि ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे जो महाजन हैं, वो हमें ये सिखा रहे हैं कि हमें कितना सतर्क रहना चाहिए आत्मसंयमी। श्रीला प्रभुपाद जब विदेश में थे, अमेरिका में थे, प्रभुपाद हम जानते हैं कि रात को अर्धरात्रि उठते थे करीब 12-12 बजे और श्रीमद् भागवत का अनुवाद करते थे। प्रभुपाद जी का ये जो स्केड्यूल है विश्व के हर कोने में एक जैसा ही होता था। कहीं से भी प्रभुपाद आए, लेकिन अगर वो रात को विश्राम करते थे 10 बजे तो 12:30 बजे उठ जाते थे। तो प्रभुपाद अर्धरात्रि को एक बार टीका लिख रहे थे तो एक वहां पर अमेरिकन लेडी थी, वो ड्रग्स लिया हुआ था, वो अर्धरात्रि को प्रभुपाद के पास आए तो प्रभुपाद ने जैसे ही देखा, प्रभुपाद एकदम चिल्लाने लगे और उन्हें एक अपने एक शिष्य को बुलाया चिल्लाते हुए, और वो शिष्य आया। प्रभुपाद ने कहा कि आप लोग क्यों नहीं ध्यान देते हो, दरवाजा ठीक से बंद रखा करो, ये रात को देखो कहां से आ गई। तो अगले दिन फिर जब श्रीमद् भागवत का प्रवचन दे रहे थे प्रभुपाद, वही जो लेडी थी वो सामने बैठी थी और प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे। तो प्रवचन के बाद प्रभुपाद ने देखा और वही आके बोले प्रभुपाद से कि प्रभुपाद स्वामी जी मुझे क्षमा कर दीजिए, जो भी घटना हुई आपको बहुत परेशानी हुई मेरी वजह से। तो प्रभुपाद मुस्कुराए और प्रभुपाद ने उनको प्रसाद दिया, आत्मसंयमी। तो ये सब महाजन हैं, ऐसे महाजन कभी विचलित नहीं हो सकते हैं। प्रभुपाद की जगह लिखते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था मैं कृष्ण को भूला हूं। और 1967 में प्रभुपाद ने एक चिट्ठी लिखी थी श्री कृष्ण पंडित को, जो छिपीवाड़ा मंदिर के इंचार्ज थे, तो प्रभुपाद ने उनको चिट्ठी में लिखा कि फिर से मुझे दिल का दौरा हुआ है, थर्ड टाइम हार्ट अटैक हुआ था प्रभुपाद को 1967। उसके बाद प्रभुपाद कुछ समय के लिए इंडिया फिर वापस आए थे। तो प्रभुपाद टाइपिंग कर रहे थे और टाइपिंग करते हुए अचानक प्रभुपाद को स्ट्रोक हुआ हार्ट, और हाथ में पसीना, पूरे शरीर में पसीना पसीना हो गया। तो बाहर ब्रह्मानंद प्रभु खड़े थे, तो प्रभुपाद ने उनको बुलाया। तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद से कि प्रभुपाद ये सब क्या हुआ, उस समय उनको स्वामी जी कहते थे, है ना। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं तो जाने वाला था, लेकिन मैंने फिर भगवान से प्रार्थना की, आई प्रे टू कृष्णा कि मेरा आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ करना का बाकी है, मुझे थोड़ा और, मेरी जो जीवन है मेरा थोड़ा और बढ़ाइए आप। तो उन्होंने मेरी बात सुन ली, प्रभुपाद कहते हैं। फिर प्रभुपाद ने एक चिट्ठी लिखी थी श्री कृष्ण पंडित को 1967 में। प्रभुपाद लिखते हैं कि मुझे माया से कोई डर नहीं है, माया मुझे कभी छू नहीं सकती, प्रभुपाद ने चिट्ठी में लिखा है, लेकिन अभी मुझे दिल का दौरा पड़ा है, फिर से मेरा आंदोलन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, आप प्रार्थना करिए महाप्रभु से, वृंदावन में जाके प्रार्थना करिए कि मैं इस आंदोलन को पूरा कर पाऊं, आंदोलन को और बढ़ा पाऊं। तो प्रभुपाद, हालांकि वो जानते थे कि माया उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, फिर भी प्रभुपाद कितने सतर्क रहते थे। तो हम लोगों को कितना सतर्क रहना पड़ेगा यह हमें सोचना है। हम लोग प्राकृत अवस्था में हैं, तो इसलिए बहुत आवश्यकता है, ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। तो ये भगवान कृष्ण के गुण हम सुन रहे हैं, लेकिन साथ में हम लोग भी सीखें कि ऐसे गुण हम लोग कैसे जागृत करें आंशिक रूप में, नकल तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये दिव्य गुण जीवात्मा के पास भी हैं। अगर ऐसे गुण हमारे अंदर नहीं है अभी वर्तमान में, तो इसका मतलब क्या है, बद्ध अवस्था में। तो ऐसे गुण जागृत होने चाहिए, ये दिव्य गुण है, ये दिव्य गुण है। और दिव्य गुण कब होंगे, जब हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी होंगी, तब ये दिव्य माने जाएंगे। मायावादियों की तरह नहीं, निर्विशेषवादियों की तरह नहीं कि कहें कि हां देखो हमने इंद्रियों का दमन कर लिया है, सब कुछ माया है, भ्रम ही सत्य है, हम कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, हम केवल हवा में जीते हैं, या फिर हम गाड़ी में नहीं चढ़ते हैं, जीवन भर हम पैदल ही चले हैं। तो इसको, ये आत्मसंयम ही नहीं है। प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद ने सारी सुविधा का उपयोग किया भगवान की सेवा में, फिर भी प्रभुपाद आत्मसंयमी थे। तो ये इस बात को हम लोग यहां से सीख सकते हैं, भगवान के गुण को सुनकर। आगे बता रहे हैं, स्थिर, जो व्यक्ति अपने इच्छित लक्ष्य की पूर्ति होने तक निरंतर कार्य करता रहता है वह स्थिर कहलाता है। यानी कि जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक मैं लगा रहूंगा। जैसे भाव भक्ति का एक लक्षण है, क्या लक्षण बताइए, जो इससे मिलता जुलता है बहुत। भाव भक्ति के 9 लक्षण हैं, उसमें एक लक्षण है, यहां बताया ना, फिर से सुनिए। जो व्यक्ति अपने इच्छित लक्ष्य की पूर्ति होने तक निरंतर कार्य करता रहता है वह स्थिर कहलाता है। भाव भक्ति के 9 लक्षणों में से एक लक्षण पूछ रहे हैं। भाव भक्ति के 9 लक्षण बताए थे, क्या बताया, होप अगेंस्ट होप, आशपन्न, है ना। तो भक्त जो है हमेशा आशा बनाए रखता है कि निश्चित रूप से जो मुझे ये साधन भक्ति का मार्ग मिला है, या जो भी मैंने रास्ता अपनाया है, जो आचार्यों के द्वारा प्राप्त हुआ है, उससे निश्चित रूप से मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, और ऐसा सोचते हुए वो भक्ति में लगा रहता है। इसको स्थिरता कहते हैं। कितनी भी अड़चनें आती हैं, समस्याएं आती हैं, शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, अन्य जीवात्माओं से कष्ट होता है, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, नाना प्रकार के क्लेश, लेकिन फिर भी ऐसे भक्त जो है लगे रहते हैं भगवान की सेवा में। वो श्लोक भी है ना, बहुत प्रचलित श्लोक है, तत्तेन कंपान सुषमिक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम तद्वाग वपुर भीर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। हाँ, ब्रह्मा जी के द्वारा ये बोला गया श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। एक बार हमारे महाराज ने बताया था, इस श्लोक को याद करके अपने गले में बांध लेना चाहिए। ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जीवन भर कष्ट उठाते हुए, सहन करते हुए, कष्टों को सहन करते हुए भक्ति में लगा रहता है जीवन के अंतकाल तक, छोड़ता नहीं है, भक्ति मार्ग को त्यागता नहीं है, लगा रहता है, बहुत कष्ट आते हैं, सहन करता रहता है, ऐसा भक्त जो है वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। निश्चित रूप से उसको धाम की प्राप्ति होगी, क्योंकि जीवन भर उसने कष्ट जो उठाया है, पिछली बार भी हमने सुना था कृतज्ञता की बात, हमने जब चर्चा की थी, है ना, इसमें तो गुण कई ऐसे हैं जिनको आपस में जोड़ा जा सकता है चर्चा करते हुए, कृतज्ञता। तो भगवान भी कृतज्ञ हैं, और जीवन भर हम लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से कृष्ण हमारे पर कृपा करेंगे। तो ये स्थिरता की बात की गई। तो यहां पे कथा सुनाई गई है, सुनेंगे आप कथा। ये कथा आप लोगों ने पढ़ी होगी वैसे तो, ये जो कि पुस्तक है कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो इस पुस्तक में कथा आती है, एक बार कृष्ण तथा राजा जाम्बवान में युद्ध हुआ, क्योंकि कृष्ण उससे सेमंतक मणि लेना चाहते थे। राजा ने जंगल में छिपने की कोशिश की, किंतु कृष्ण हतोत्साहित नहीं हुए, उन्होंने बड़ी स्थिरता से राजा को ढूंढ निकाला और अंत में मणि प्राप्त कर ली। तो ये कथा द्वारका की कथा है, और द्वारका धाम के ही दायरे में एक राजा रहते थे जिनका नाम था राजा सत्राजीत। ठीक है, ये सूर्यदेव के भक्त थे और सूर्यदेव की पूजा करते थे। तो सूर्यदेव की पूजा करते करते सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए उनसे, और उनको एक मणि प्राप्त हुई। मणि मतलब मणि कहेंगे, ज्वेल को क्या कहते हैं, तो इनको एक मणि वरदान में दी सूर्यदेव ने, स्वंतक मणि। और क्योंकि सूर्य देवता बहुत खुश थे इनसे, और कोई मणि प्राप्त हो गई, इन्होंने क्या किया, उसको गले में लटकाया और द्वारका में प्रवेश किए, यह दिखाने के लिए कि कितना बहुमूल्य रत्न इनको प्राप्त हुआ है। और उस मणि से इतना तेज निकल रहा था, प्रकाश निकल रहा था, सारे द्वारकावासी देखकर चकित हो गए। लेकिन उन्होंने ये सोचा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारकाधीश के पास बड़े बड़े देवी देवता भी आते रहते हैं मिलने के लिए, तो ये शायद सूर्य देव आए हैं उनसे मिलने के लिए, क्योंकि उनके शरीर से जो प्रकाश निकल रहा था सबको ये लग रहा था कि ये सूर्यदेव है। तो इस प्रकार वो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। लेकिन बाद में फिर कृष्ण ने बताया, भगवान ने बताया कि ये सूर्यदेव नहीं है, ये राजा सत्राजीत है, इनको सूर्यदेव से क्या प्राप्त हुआ है, ये मणि प्राप्त हुई है, सिमंतक मणि प्राप्त हुई है, इस वजह से उससे प्रकाश निकल रहा है। तो ये सिमंतक मणि जो है उन्होंने एक सभा भवन में रखवाया, और ये स्मृतक मणि क्या करता था, सोना देता था, 170 पाउंड सोना प्रत्येक दिन ये देता था। तो जैसे कि भौतिकवादी लोग जो हैं उन्हीं की पूजा करते हैं जिनसे लाभ मिल जाए, धन मिल जाए, है ना, इच्छा की पूर्ति हो जाए, तो इस तरह से राजा सत्राजीत इनकी पूजा करने लगे। और लेकिन वास्तव में आचरण क्या होना चाहिए कि राज्य में कोई भी श्रेष्ठ चीज हो वो राज्य का जो अधिकारी है यानी कि राजा है उनको अर्पित करना चाहिए। तो यह राजा कौन थे, स्वयं भगवान कृष्ण द्वारकाधीश, उनको ना अर्पित करके उन्होंने अपने पास ही रख लिया, और इस तरह से लोग आकर्षित होने लगे। तो एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि अच्छा नहीं है कि आप इसको अपने पास रखे हुए हैं, मेरी इच्छा यही है कि आप हमारे जो क्या कहते हैं ग्रैंडफादर दादाजी उग्रसेन, महाराजा उग्रसेन को आप या भेंट करें। उन्होंने अपने लिए नहीं मांगा, उन्होंने कहा कि आप महाराज उग्रसेन को दे दें क्योंकि सबसे वरिष्ठ वही हैं, सबसे बड़े वो हैं। तो उन्होंने भगवान की बात को सुना नहीं, स्वीकार नहीं किया, नहीं माना। और ये जो संतक मणि है कौन ले गया, उनके भाई ले गए, उनके भाई ले गए। और उनके भाई का नाम था प्रसेन। और ये प्रसेन एक बार शिकार के लिए जंगल में गए, वही समय तक मणि पहनकर, जो भी पहनता था वो चमकता था और लोग उनके पीछे पीछे जाते थे दिखाने के लिए। इस प्रकार वो पहन के गए और इस प्रकार घूमने लगे जंगल में इधर उधर। तो रास्ते में क्या हुआ, एक बहुत बड़े शेर ने आक्रमण किया और शेर ने क्या किया, मार दिया। किसको, उनके भाई को और साथ में उस घोड़े को भी, दोनों मारे गए। और शेर जो है वो लेके चला गया उस स्वैंतमणि को गुफा में, अपने जहां पर रहता था वो। और बाद में जामवान ने जब देखा कि इनके पास ये है तो उन्होंने सोचा कि अपने पुत्र के लिए कुछ खेलने का अच्छा सामान मिल जाएगा ये। तो उन्होंने, जामवान ने क्या किया, हाथों से बिना शस्त्र के उस शेर को मार दिया और उनसे स्वैंतक मणि लेकर जामवान जो है उस मणि को अपनी गुफा में लेकर आ गए और अपने बच्चे को दे दिया, चलो भाई तुम इससे खेलो। तो जामवान में बड़ी शक्ति थी। वास्तव में ब्रज में जो ललिता सखी हैं वो इनकी बेटी बनती हैं, पुत्री बनती हैं, जाम्बवती। वैसे तो ये ललित माधव में कथा है, अब उससे से जोड़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर अलग उसी की क्लास हो जाएगी। क्या कैसे ब्रज के जैसे गोपियां हैं 16108 गोपियां, वही 16108 पटरानियां कैसे बनी, श्रील रूप गोस्वामी ने बताया। तो ये सत्यभामा कौन है, सत्राजीत की जो पुत्री है सत्यभामा, वो श्रीमती राधारानी की विस्तार है और ये जाम्बवती विस्तार है ललिता सखी। तो ऐसी कोई लीला है, लीला में ऐसा होता है कि एक बार राधारानी जो है यमुना जी की तरफ देखती है कृष्ण से विरह के कारण, तो यमुना जी में कूद जाते हैं और बाद में विशाखा जी भी उसमें कूद जाते हैं। विशाखा जी की तो रक्षा यमुना जी कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि यमुना जी जो कालिंदी है वो किनके, किनकी बहन है, किनकी बहन है, यमुना जी की बहन है ना। और यमुना जी किसके बेटे हैं, सूर्य के। तो इस तरह से वो सूर्य लोग पहुंच गए राधारानी। और बाद में राजा सत्राजीत को वरदान दिया सूर्यदेव ने, ये पुत्री वरदान में दिया और वो राधारानी अपना विस्तार कर गई सत्यभामा के रूप में और द्वारका में चले गए। ये ललित माधव इस तरह से लीला आती है। खैर वो यहां पर ये नहीं बता रहे यहां पर, क्योंकि द्वारका की लीला चल रही है, क्योंकि द्वारका की लीला सुनते हैं हम लोग ब्रज का नाम भूल जाए, इसलिए थोड़ा बहुत उन्होंने ब्रज से इसको जोड़ दिया। और तो उन्होंने अपने पुत्र को दिया स्मैंतक मणि और उसके बाद सत्राजीत अपने भाई के लिए बहुत चिंतित हुए और उन्होंने एक हवा फैला दिया, रूमर, स्मैंतक मणि के चक्कर में ये द्वारकाधीश ने, भगवान श्री कृष्ण ने, कृष्ण ने क्या किया है, मेरे भाई को मार दिया, इस प्रकार उनको अपमानित किया उनका अपयश फैलाने के लिए, क्रोधित होकर जैसा भी है। तो फिर कृष्ण ने सोचा कि ये ठीक बात नहीं है, तो वो फिर निकले, वो भी शिकार में निकले, शिकार मतलब वो भी जंगल की तरफ निकले पता लगाने के लिए उस स्मैंतक मणि है कहाँ वहां। तो उसको पता लगाने के लिए जब पहुंचे तो वहां पर एक बहुत लंबी गुफा थी, टनल था, द्वारकावासी भी आए थे और उसके अंदर जाने के लिए सब भयभीत हो रहे थे। तो कृष्ण ने कहा कि आप लोग समझ जाएं, आप लोग सब बाहर खड़े रहें, मैं अंदर जाता हूं। तो कृष्ण स्वयं अंदर गए। 12 दिन तक तो ये लोग इंतजार किए, लेकिन 12 दिन के बाद इनको भूख लगी, प्यास लगी, थक गए बेचारे, तो ये लोग वापस चले गए द्वारका, लेकिन कृष्ण अंदर ही रह गए। तो वहां पर उस बच्चे को एक संभाल रही थी धात्री, किसको नर्स कहते हैं उसको, मेड सर्वेंट थी जो, वो उस बच्चे को, बच्चे के पास बैठी थी। तो कृष्ण ने देखा कि वो बच्चा जो है उसके बाद ही स्वयं तक बनी है, और लेकिन जब उस नर्स को लगा कि ये व्यक्ति आया है और ये स्वयं तक बनी ले लेगा, तो जोर से चिल्लाने लगी, और जब चिल्लाने लगी तो फिर जामवान वहां पर आ गए, और जामवान ने जब देखा तो वो बड़े क्रोधित हो गए, हालांकि वो भगवान के भक्त थे, राम के भक्त थे, है ना। कई ऐसे चिरंजीवी हैं जो उनको ये वरदान मिला हुआ है कि एक कल्प तक वो रह सकते हैं, जीवित रहेंगे इस पृथ्वी में, हाँ, उसमें जामवान भी एक है। तो इस कारण से त्रेता युग में भी थे, और उसके बाद द्वापर युग में भी थे, कलयुग में दिखते नहीं।
भगवान वामन के अवतार
हैं,
भगवान वामन के अवतार
जो भी है, लेकिन अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहे हम, अभी तो इतना बता रहे हैं कि जामवान जो है ये वही है जो त्रेता युग में थे, कि भगवान राम के भक्त हैं। तो इस तरह से जामवान ने चुनौती दी कृष्ण को, और युद्ध प्रारंभ हुआ, और 28 दिन तक ये युद्ध चला, 28 दिन तक देखिए युद्ध किया कृष्ण ने जामवान के साथ, एक दो दिन नहीं, 28 दिन लगातार युद्ध करके, इतना युद्ध, बड़ा भयानक युद्ध हुआ, और आखिर में जामवान को इतना इतना पीटा, इतना मारा, बाद में आखिर में वो बहुत थक गए, शरीर से पसीना पसीना निकलने लगा। उन्होंने सोचा ये कौन है, ये आज तक तो मुझे इतना कोई नहीं मार पाया, और 28 दिन से हम लोगों के बीच में युद्ध चल रहा है। तब उनको लगा कि ये साक्षात नारायण है, क्योंकि इनके अलावा और कोई मुझे इस तरह से नहीं मार सकता है। तो समझ गए कि स्वयं भगवान राम है जो इस रूप में प्रकट हुए मेरे समक्ष। तो इस प्रकार फिर बाद में जब भगवान कृष्ण ने अपने आप को बतलाया अपने बारे में, तो जामवान समझ गए, और उन्होंने उनको एक भेंट के रूप में अपनी पुत्री को भी सौंपा, जामवती को भी सौंपा, और साथ में सेवंतक मणि भी दे दिया। तो कहने का यहां पर मतलब यह है कि स्थिरता, यानी कि इतना अपयश होने पर भी स्थिर रहना। कई बार क्या होता है कि प्रचार में भी अपमानित होते हैं भक्त लोग, और कई बार ऐसा होता है, ऐसी घड़ी आती है कि अपयश भी फैल सकता है। तो इसमें, ऐसे में स्थिरता की बहुत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आज अगर आपको यश मिल रहा है तो कल आप यश के लिए भी तैयार रहिए, आज अगर आपको अपयश मिल रहा है तो कल यश के लिए भी तैयार रहिए, दोनों परिस्थिति में स्थिरता होनी चाहिए कि भक्ति के मार्ग से हम लोग च्युत ना हो जाए। जो श्लोक है गीता का, जिसकी हम चर्चा कल भी कर रहे थे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो ये जो श्लोक है जिसमें भगवान बता रहे हैं गीता में कि फल से आसक्ति मत रखो, फल के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो हम लोग रास्ते में प्रवचन सुनते जा रहे थे प्रभुपाद का, प्रभुपाद इसको बहुत अच्छी तरीके समझाते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि अगर एक आप रॉड से किसी सांप को मारते हैं तो रॉड को दोष नहीं दे सकते आप, है ना, दोष अगर देना ही है तो मारने वाले को दो, लेकिन रॉड को दोष नहीं दे सकते हैं। इस तरह से जब कोई अधिकारी या स्वयं भगवान कृष्ण या उनके प्रतिनिधि हमें आज्ञा देते हैं कुछ करने के लिए, तो हमें निष्काम भाव से फल की ना इच्छा रखते हुए हमें कार्य करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग असफल भी होते हैं तो तभी हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगी, हम उसके कारण नहीं बनेंगे, क्योंकि हमें जैसे बताया गया हमने वैसे किया। और अगर यश भी प्राप्त हो जाएगा, सफलता भी प्राप्त होती है, उस आज्ञा को पालन करते हुए सफलता प्राप्त होती है, तो सफलता का श्रेय भी हम नहीं ले, सफलता का श्रेय भी किसको जाएगा, भगवान को जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो वास्तव में योग में स्थित रहता है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया, भगवान कह रहे गीता में। तो योग का मतलब ही यही है कि अनासक्त रहना फल से और भगवान की सेवा में तत्पर रहना, ये कला है। मान लीजिए कि आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है आपके माध्यम से, आप निमित्त हैं, लेकिन जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसके अधिकारी आप नहीं हैं। ये नहीं कि जितना प्रॉफिट हुआ है तो आपको दे देगा, प्रॉपर एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको जो मिलना है वो दिया जाएगा, लेकिन ये उम्मीद मत रखिए कि सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसलिए फल से आसक्ति रखने का क्या फायदा, श्रेय तो उन्हीं को ही मिलने वाला है, और जो आपको मिलेगा क्या मिलेगा, प्रसाद, हमें प्रसाद मिलेगा, कृपा मिलेगी, है ना। प्रसाद के लिए हम लोग लालायित हो सकते हैं लेकिन फल के लिए नहीं। इसलिए फल से अनासक्त होकर हमें सेवा में लगे रहना चाहिए, अपने को कर्ता ना मानते हुए, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वो आज्ञा के कारण कर रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर दोष नहीं लगेगा, आरोप नहीं लगेगा, और ना ही हमने कुछ अगर प्राप्त किया है तो हम सोचेंगे हमारी प्रशंसा होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि फल के ऊपर हमारा कोई अधिकार है ही नहीं, क्योंकि जो प्रशंसा वाली बात है या सफलता वाली बात है वो भी भगवान ने पहले से फैसला करके रखा हुआ है कि इसके माध्यम से या इनके माध्यम से ये कार्यक्रम मैं करूंगा पूरा। जैसे महाप्रभु ने भविष्यवाणी की, पृथ्वी ते यथे आचे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मेरो नाम, पृथ्वी में जितने भी नगर आदि ग्राम है सब जगह मेरे नाम का प्रचार होगा, ये तो महाप्रभु ने कह दिया, वो तो होना ही है, प्रभुपाद ने करके दिखा दिया। हालांकि पूरा जगत प्रभुपाद जी को श्रेय देता है, हम भी देते हैं, लेकिन प्रभुपाद स्वयं वो श्रेय खुद नहीं लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि ये तो पहले से भविष्यवाणी हो चुकी है, मुझे तो आज्ञा दी गई थी, मैंने कर दिया, बस मैंने क्योंकि किया आज्ञा का पालन, यही मेरा श्रेय है। बस मेरा श्रेय ये नहीं है कि इतने बड़े मंदिर हैं, मेरा श्रेय ये नहीं है कि इतनी किताबें बढ़ गई हैं, मेरा श्रेय ये नहीं है कि इतने सारे विग्रहों की स्थापना हो गई है। प्रभुपाद क्या सोच रहे हैं, मेरा श्रेय केवल ये है कि मुझे सेवा का मौका मिला और भगवान ने मुझे चुना, मुझे निमित्त बनाया। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को क्या करें, निमित्त मात्र भव सवे साचिन। तो ऐसे में हम स्थिरता बनाए रख सकते हैं भक्ति में, लाभ हानि सुख दुख सर्दी गर्मी बरसात कैसा भी हो, कैसी व्यवस्था हो, मतलब हम सेवा में लगे रह सकते हैं, स्थिरता बनी रहेगी। तभी स्थिरता ना बनने का कारण भी यही है कि हम लोग फल से आसक्त हो जाते हैं। सेवा करने से पहले हम फल की चिंता करते हैं, और अगर फल की चिंता करते भी हैं तो कैसे लिए कि फल का उपभोग मैंने करना है। इस कारण से हम लोग दुखी रहते हैं भक्ति मार्ग में आने के बाद भी, क्योंकि जो यश प्राप्त हो रहा है, जो सफलता प्राप्त हो रही है, वो भी गुरु कृपा से हो रही है, तो गुरु को ही वापस हो जाना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृत कस्य स्वाध्यनम ईशावाश्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। तो छोड़ दिया गया हमारे लिए, उसी को हमें लेने का अधिकार है, ऐसा सोचकर हम लोग भक्ति में लगे रहे तो स्थिरता बनी रहेगी, स्थिर। तो इस प्रकार ये कथा है सहिष्णु 24वां। जो व्यक्ति सभी तरह के कष्टों को चाहे वे कितने ही असह्य क्यों ना हो सह लेता है वह सहिष्णु कहलाता है। जब कृष्ण गुरुकुल में रह रहे थे तो वे अपने गुरु की सेवा करते समय सभी प्रकार के कष्ट झेलने में तनिक भी नहीं सकुचाए, यद्यपि उनका शरीर अत्यंत मृदु तथा कोमल था। शिष्य का कर्तव्य है कि वे सारे कष्टों को सहते हुए अपने गुरु की सब तरह से सेवा करें। गुरुकुल में रहते हुए शिष्य को द्वार द्वार से भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। जब प्रसाद का वितरण होता है तो गुरु को हर शिष्य को बुलाकर प्रसाद ग्रहण करने को कहना होता है। यदि गुरु शिष्य को प्रसाद देने के लिए बुलाना भूल जाए तो शास्त्रों के अनुसार शिष्य का कर्तव्य है कि वे उस दिन अपने आप भोजन ना करके उपवास करें। ऐसे बहुत से नियम हैं। कभी कभी कृष्ण लकड़ी लाने के लिए जंगल भी जाते थे, कौन जाते थे? कृष्ण और सुदामा जी जाते थे, है ना। जब वो गुरुकुल में थे तो लकड़ी लेने गए, कितनी बारिश आई, कितना आंधी तूफान आया, लेकिन फिर भी अपना कार्य करके पूरा आए। तो भगवान स्वयं दिखाते हैं कि जब स्वयं वो गुरुकुल में गए तो किस तरह का आचरण उन्होंने किया। एक शिष्य के रूप में ही रहे वहां पर, वहां इन्हें बताया कि मैं इस राजा का लड़का हूं या मैं भगवान हूं, नहीं, एक शिष्य के रूप में उन्होंने आचरण करके दिखाया। और शिष्य का मतलब है जो हमेशा अनुशासन में रहता है। शिष्य शब्द जो आता है वो शस्त्र धातु से आता है। शस्त्र धातु से कई शब्द निकलते हैं, शस्त्र, शास्त्र, शिष्य, इस प्रकार कई शब्द निकलते हैं इसमें से। और अनुशासन का मतलब ये है जो अनुशासन में रहता है उस भक्त को शिष्य कहा जाता है। यानी कि गुरु के कह देने पर वो फिर दोबारा सोचता नहीं है, तर्क नहीं करता है, यथारूप पालन करने का प्रयास करता है। आचरण दासवान नीचो गुरु सहोद सोरदा, ब्रह्मचारी गुरु कुले वसन दान तो गुरोर हितम। तो वो गुरु के हित के लिए अपना जीवन बिताता है, अपना कोई हित नहीं रहता, अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता है। इसके लिए वो किसी तरह का भी कष्ट उठाने के लिए तैयार है, कहीं भी जाने के लिए तैयार है, किसी भी समय तैनात रहता है हमेशा। जैसे आज सुबह हमारे प्रभुपाद जी के बहुत ही अग्रगण्य शिष्य आए थे, उमापति महाराज, है ना, जो कि ऐसे देश में प्रचार कर रहे हैं जहां प्रचार करना बहुत बहुत कठिन कार्य है। जैसे हम देखते हैं उज्जैन गए, या फिर कृष्ण सुदामा भी गए थे, सुदामा जी वहीं पे आए थे, उज्जैन में आए थे ना सब, शांति मुनि मुनि के आश्रम में थे सब एक साथ, नहीं, हाँ, कृष्ण बलराम और सुदामा जी भी उसी समय थे, ठीक है ना। तो जंगल गए, लेकिन प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को अमेरिका से चाइना भेज दिया, रशिया भेज दिया, अफ्रीका भेज दिया, पाकिस्तान भेज दिया, भारत भेज दिया, जापान भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया, अमेरिका से कुछ भक्तों को प्रशिक्षित करके। प्रभुपाद ने कुछ भक्तों को प्रशिक्षित किया स्वयं और उन्हीं को भेजा, इस तरह से आंदोलन फैल गया। प्रभुपाद की सफलता का राज का कारण क्या है, यह भी एक है कि उनके शिष्य समर्पित थे, दोबारा वो सोचते नहीं थे। तो आज भी ये महाराज जो है वहां पर, आज भी जो वहां पर प्रचार कर रहे हैं, चीन में प्रचार कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है वहां प्रचार करना, वहां लीगल नहीं है ये प्रचार करना, लीगल नहीं है, लेकिन वहां रहकर भी उन्होंने कई चीनी लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाया, महामंत्र का जप कर रहे हैं, भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं चाइनीज लैंग्वेज में, चाइनीज भाषा में, क्योंकि कष्ट उठाया, गुरु की आज्ञा में इतना विश्वास था क्योंकि इनको, तो इन्हें देखा कि इनको सफलता मिल रही है, और फिर भी इनकी नम्रता यह है कि वो सारी सफलता का श्रेय वो प्रभुपाद को देते हैं। आज के दिन भी, आज सुबह हमने देखा कैसे वो प्रभुपाद का गुणगान कर रहे हैं इतनी सफलता प्राप्त करने के बाद। तभी हम शिष्य रह पाए। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण गुण है भगवान का भी, और भगवान ही दिखा रहे हैं, हम हमारे सिखा रहे हैं आचरण के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं देखिए, महाप्रभु को आज्ञा मिली अपने गुरु से, क्या आज्ञा मिली, आप हरि नाम का प्रचार करो, आप प्रचार प्रसार करो, पूरे जगत को कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत कर दो आप। उससे पहले चैतन्य महाप्रभु ने ज्ञान का प्रदर्शन किया नवद्वीप में, लेकिन जब श्रीपाद ईश्वरपुरी से मिले उसके बाद केवल कृष्ण भक्ति की चर्चा की उन्होंने। तो इससे इस तरह से देख सकते हैं कि उससे पहले केवल प्रजल्पा कर रहे थे, लेकिन जब श्रीपाद ईश्वरपुरी ने उनको शिष्य बनाया तो बिल्कुल अनुशासन में आ गए, प्रजल्पा बंद कर दिया उन्होंने, केवल कृष्ण कथा कर रहे थे। ये तपस्या है, सबसे बड़ी तपस्या क्या है, गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। और बहुत परीक्षा होगी कि हम इस आज्ञा का पालन ना कर पाए, इसके लिए भी परीक्षा होगी। कई बार आप भूल जाएंगे, कई बार आपका शरीर साथ नहीं देगा, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, कई विरोध होंगे, रिश्तेदार मना करेंगे, घर वाले मना करेंगे, या पड़ोसी मना करेंगे, गुरु ने आज्ञा दी हुई है। और ऐसे वातावरण में रहकर, ऐसी स्थिति परिस्थिति में रहते हुए भी गुरु की आज्ञा का पालन करना है, बड़ा कठिन होता है कार्य। प्रभुपाद को जब पहली बार मिले श्रील भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर, है ना, क्या बोला उनको कि आप अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, विश्व भर में प्रचार करो इसका, भागवत धर्म का, पहली बार। और उस बात को क्योंकि प्रभुपाद ने हृदयंगम किया, और वास्तव में प्रभुपाद ने करके दिखा, कितना कष्ट उठाया प्रभुपाद ने, है ना, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, कैसे झेला होगा इन हिपीस को। कल हम लोग आ रहे थे, जब बाहर से कहां से आ रहे थे, वहां भवाना रोड से आ रहे थे, तो रास्ते में प्रभुपाद का हम लोग ऑडियो सीडी सुन रहे थे, भजन सुन रहे थे, विंटेज सीरीज। उस समय प्रभुपाद महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, और साथ में मृदंग भी नहीं है, एक वो डमरू जैसा था कुछ, और हिपीज जो आए हुए हैं प्रभुपाद की क्लास में, प्रभुपाद बैठे कीर्तन कर रहे हैं, वीडियो में भी है, और वो हिपीज अलग अलग तरह के हैं, रंगों में कपड़े पहने हैं, बाल बड़े बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी है, और कोई सितार लेके बैठा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, सबके बाद अपने अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और प्रभुपाद कीर्तन करते जा रहे हैं, कोई ऐसे डांस कर रहा है, कोई लेटा हुआ है पांव फैला के बैठा हुआ है, बड़ा अजीब सवाल लग रहा था, और प्रभुपाद चुपचाप चैंटिंग करते जा रहे हैं। प्रभुपाद ने कैसे सहन किया हुआ है इन सबको, कई बार ये लोग मुंह पे धुआं फूंकते थे आकर शुरू के दिनों में, उनको नहीं पता था कौन थे। प्रभुपाद जब शौच क्रिया के लिए जाना होता था वॉशरूम में, तो लाइन लगती थी, तो प्रभुपाद सबसे पीछे खड़े होते थे, लेकिन कुछ कहते नहीं थे, प्रभुपाद चुपचाप पीछे खड़े रहते थे। प्रभुपाद इनके आने से पहले प्रभुपाद सामान खरीद के लाते थे प्रसाद बनाने के लिए, साफ करते थे खुद, कमरा साफ करते थे, बर्तन साफ करते थे, कुकिंग करते थे खुद अपने हाथों से, उनको खिलाते थे, और ये लोग प्रसाद लेके चले जाते थे। यहां तक कि जब पहली बार जब दीक्षा का समारोह हुआ, जैसे हमारे आज महाराज आए वो भी थे, पहले 12 शिष्यों में से हैं महाराज जी, तो ये सब दीक्षा लिए, प्रभुपाद लीलामृत में आता है, तो दीक्षा लेने के बाद प्रसाद लिया सब चले गए उसके बाद। अब इनको पता नहीं ना क्या करना, उसके सफाई कौन करेगा वहां पर, और गुरुदेव की सेवा होनी चाहिए सबसे पहले। तो फिर भी प्रभुपाद जो है कुछ नहीं किया, प्रभुपाद ने कुछ नहीं कहा, प्रभुपाद सहन करते रहे इनको, है ना। इसलिए शिक्षाष्टकम का श्लोक जो है, तृणादपि सुने चैन तरोर अपि सहि सुना अमानी ना मान देन कीर्तनीय सदारी, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं लिखा है, इस संस्था में बहुत अधिक लागू होता है, कि बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। प्रचार के आंदोलन जो होता है उसे सहन करना पड़ता है बहुत कुछ। तो इस प्रकार प्रभुपाद ने किस किस तरह से सहन किया अंदाजा नहीं लगा सकते हम लोग। फिर उसके बाद जब ये लोग चले जाते थे, तो प्रभुपाद वो इलाका सारा साफ करते थे, यहां तक कि वो जो प्लेट छोड़ जाते थे उसको भी साफ करते थे। इन लोगों को नहीं पता होता था, प्रभुपाद बताते भी नहीं थे ये कि मैंने साफ किया था करके। सबसे बड़ी बात ये थी कि कई बार क्या है कि लोग सेवा करने के बाद फिर बताते हैं, तुम सब बेकार हो, सब तमोगुण में हो, मुझे सेवा साफ करना पड़ा, है ना, तुम्हारे जाने के बाद मुझे ये सब करना पड़ा, क्या फायदा तुम लोगों का यहां पर रहने का। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा कुछ नहीं किया, प्रभुपाद ने केवल उन लोगों की सेवा की, है ना। प्रभुपाद ये कहते थे कि मैं तो हमेशा सेवा कर रहा हूं, शुरू से ही ऐसे सेवा कर रहा था, आप लोग जब नहीं होते थे तो मैं लेके आता सामान लेके आता था, मैं कुकिंग करता था, आप लोग जब चले जाते थे तो सफाई भी मैं करता था। प्रभुपाद कहते आज ही मैं सेवा कर रहा हूं, ये जो बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, प्रभुपाद कहते थे ये तो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, आप लोग यहां रहते हैं, मैं तो आता हूं दो दिन रहता हूं फिर चला जाता हूं, आज भी मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूं। तो इस प्रकार ये हमारे संप्रदाय में जो गुरुजन है उनका ये विचारधारा की ऐसी रहती है कि वो अपने शिष्य को इस नजर से देखते हैं, अपने आप को गुरु नहीं मानते, वो अपने आप को सेवक मानते हैं अपने शिष्य का, और ये सोचते हैं, ये विचार रखते हैं कि कैसे इस भक्त को मैं प्रशिक्षित करूं कि अच्छी तरह से कृष्ण की सेवा कर सके, सेवा समझकर। जैसे श्रीपाद ईश्वरपुरी ने यही कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको दीक्षा दूं तो सेवा समझकर मैं आपको दीक्षा देता हूं, नहीं तो मैं आपका गुरु नहीं बन सकता, है ना, मैं आपका कैसे गुरु बन सकता, आप तो साक्षात नारायण है, आपको आपको कौन दीक्षा देगा। तो इस प्रकार सहन करना पड़ता है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि के प्रारंभ में हम देखते हैं कि जब प्रलय था चारों तरफ, डिवेस्टेशन था, है ना, कितने समय तक डिवेस्टेशन था, ये हजार थाउजेंड साइकिल्स, जो चार युग हैं उसके थाउजेंड साइकिल्स तक डिवेस्टेशन चल रहा था, और महाप्रलय चारों तरफ जल ही जल, पानी ही पानी, और ब्रह्मा जी सब देख रहे हैं उस कमल के ऊपर बैठे हुए हैं, कमल आसन में बैठे हुए ब्रह्मा जी सब देख रहे हैं, उनको डर भी लग रहा था लेकिन ब्रह्मा जी सब कुछ सहन कर रहे थे, और ऐसे में उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया भगवान के। तो ये तो यानी कि बिना कष्ट सहे कुछ नहीं मिलता है, नो पेन नो गेन, है ना, बोलते हैं ना, तो इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमारे लिए क्या है, जैसे यहां पर आए थे ईश्वरेंद्र तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आए थे, तो नीचे गोविंदा रेस्टोरेंट में महाराज प्रवचन दिया था, उस समय मंदिर वहां था, तो महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद जी के शिष्यों को बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो उनके शिष्य हैं उनको केवल मंदिर संभालने होंगे, चार नियमों का पालन करना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक सोलह माला का जप करना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ी तपस्या है। आज के समय में चार नियम का पालन करना बहुत बड़ी तपस्या है, पता नहीं क्या खा जाए और क्या किसमें क्या निकल जाए। अभी लुधियाना में वो प्रसाद ले रहे थे तो उसमें वो सॉस डाला उन्होंने, तो चखा तो ऐसा लगा उसमें प्याज का स्मेल आ रहा है, प्याज का टेस्ट आ रहा था, तो पूजा प्रिया पर उन्होंने जाके चेक किया तो उनको भी हाँ संशय हुआ कि हाँ इसमें होगा शायद, पैकेट में तो नहीं लिखा था लेकिन टेस्ट से पता चल रहा था, तो किसमें क्या मिला हुआ कुछ पता नहीं, एकादशी कई एकादशी टूट चुकी है हमारी, पनीर खा रहे हैं कभी खीर खा रहे हैं, वो सारा दूध जो है सोयाबीन से बना हुआ है, एकादशी तो बहुत टूटती है हमारे, तो ये सब सहन करना पड़ता है कली काल में, इसलिए बहुत मुश्किल है सब। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गधिरन्यथा, इसे अच्छा है कि निर्जल रहो, फल भी खाते हैं फल भी खाते हैं उसमें भी केमिकल्स है ना, ग्रेन पेस्ट केमिकल्स हो सकते हैं, कई बार केमिकल्स भी ग्रेन पेस्ट हो सकते हैं केमिकल्स। अमेरिका में जो एप्पल्स मिलते हैं बड़े चमकते हैं दूर से, लीचेस होता है ना, लीचेस कीड़ा होता है लाल रंग का, उसका पाउडर बना के वो सेब के ऊपर लगाते हैं और दूर से चमकता है, लोग उसको खरीद के खाते हैं वेज फूड लेकर, खाएं तो क्या खाएं, अभी अभिनव प्रयोग गए थे वहां पर, भाग के आ गए वापस, अब दोबारा कभी नहीं जाना चाहते, पूरा साक्षात्कार हो गया उनको पूरी अनुभूति होगी। लेकिन कलयुग में ये सब सहन करना पड़ेगा, कलयुग में ये समस्याएं बढ़ेंगी और घटेंगे नहीं, यानी कि हम सोचते हैं कि अगले जन्म में हम परिपक्व होके सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, इस जन्म नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, भक्त के परिवार में तो जन्म होगा ही होगा, लेकिन कलयुग भी बढ़ेगा, जब तक हम लोग दोबारा जन्म लेंगे तब तक कलयुग बहुत बढ़ चुका होगा, यानी कि और मुश्किल हो जाएगा भक्ति करना। जैसे आजकल युवा अवस्था में पीठ में दर्द हो रहा है तो बुढ़ापे में क्या होगा, सब लेटे होंगे और टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग मंगल आरती अटेंड करेंगे, स्क्रीन में राधा पार्श्वती का दर्शन करते हुए कान में आप लगा लेंगे जैसे लगाया हुआ है उन्होंने, और एक व्यक्ति कहीं कमरे में बैठ के गाएगा और सब कान में अपने ईयरफोन लगा के सुनेंगे संसार दावनल संसार दावनल, तब लगेगा वास्तव में दावनल है। हाँ शायद ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से हमारी भक्ति बढ़ेगी आगे, क्योंकि हमें अनुभूति होगी कि वास्तव में दावनल है। अभी तो क्या है कि वहां से कूलर चल रहा है और कुछ दिनों में शायद एसी भी लग जाएगा टेम्पल हॉल में, तो संसार दावनल तो हम लोग अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन कलयुग का जब प्रभाव पड़ेगा, शरीर इतना ज्यादा रुग्ण हो जाएगा, उठना मुश्किल हो जाएगा, लेटे लेटे हमें मंगल आरती में भाग लेना पड़ेगा, तो सहन करना पड़ता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप देखिए सोवियत यूनियन से रशिया से आए थे भक्त लोग, कैसे उनकी तो अपनी पूरी कथा ही है ना, सहन करने की कथा ही है, सॉल्टेड ब्रेड जो बुक है, कैसे साइबेरिया में जेल में डाल दिया गया, लूनाटिक असाइलम में डाल दिया गया 6 महीने के लिए, लगातार ब्रेड ही खाते रहे वो, कितना मारा गया उनको, कितना टॉर्चर किया गया उनको, फिर भी हरिनाम नहीं छोड़ा। हरिदास ठाकुर के बारे में सुनते हैं हम लोग कि 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा गया, 500 साल पहले की बात है, ये तो अभी की बात है, आज से 30-35 साल की पहले की बात है सिर्फ, कि इन भक्तों ने कितना कष्ट उठाया, कितना अभी की बात भी है कजाकिस्तान में, कैसे वहां पर वहां की सरकार जो है भक्तों को पीट रही है, उनके घर को तोड़ा गया, बुलडोजर से तोड़ा गया। दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में से सरकार की तरफ से एक शब्द भी नहीं गया उनके सपोर्ट में, तो भक्त लोग कष्ट उठा रहे हैं, मारा जा रहा है उनको, तो ये लोग ऐसे बच जाएंगे। फिर भी भक्त लोग जो है सहन कर लेते हैं, क्यों कैसे सहन कर पाते हैं? सहन हम कर पाते हैं जब हमें कृष्ण भक्ति का आनंद प्राप्त होता है, ये रहस्य है। आप पूछ सकता है कि भक्त लोग सहन कैसे कर लेते हैं, कोई प्रश्न पूछ सकता है। देखिए कई बार सहन करना पड़ता है, लोगों को समझाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप सड़क पर जा रहे हैं, सिग्नल्स पे आपको रुकना ही पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। वेदर कंडीशंस को आप चेंज नहीं कर सकते, सहन करना पड़ेगा। तो कई बातों को तो हम समझा सकते हैं, लेकिन भक्त लोग कैसे सहन करते हैं, किस कारण से सहन करते हैं? क्या इन्हीं बातों को सुनकर केवल सहन कर लेते हैं भक्त लोग? नहीं, भक्त लोग सहन कर पाते हैं परम दृष्ट्वा निवर्तते, जो कि भगवत गीता भगवान कह रहे हैं। ये नहीं है कृष्ण भक्ति का आनंद संकीर्तन के माध्यम से। क्या श्लोक है? विषया विनिवर्तन्ते निरहारस्य देहिना रसोवर्जम रसोप्सु परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब तक आपको ऊंचे रस का आस्वादन आप जब तक हम नहीं कर लेते हैं, तब तक आप अध्यात्म बुद्धि में ही रहेंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमें कृष्ण भक्ति का आनंद प्राप्त होता है तो सहन करना बड़ा आसान हो जाता है। हीरा रखा हुआ आपके लिए पंजाबी बाग में, और रात को मिलेगा आपको 11 बजे आप जाएंगे तो, उस हीरे की कीमत है 5 करोड़। रास्ते में आंधी तूफान आने वाला है, साइक्लोन टोर्नाडो भी आ सकता है, आपके नाम पे रखा हुआ है, निश्चित रूप से मिलेगा आप जाएंगे तो आप सोचेंगे ना जाने के लिए, आपको बता दिया कि रास्ते में सब कष्ट आएंगे, फिर भी आप सोचेंगे हाँ दूसरे रास्ते से जाता हूं मैं, इधर से नहीं उधर से घूम के जाऊंगा। तो हम कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं जब हमें पता चलता है कि हमें हीरा मिलने वाला है। इसी तरह से जब आनंद की अनुभूति होती है, कृष्ण भावना का हम लोग आनंद उठाते हैं, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, तो ऐसे में क्या होता है, भक्त फिर तैयार हो जाता है सहन करने के लिए। उस फिर सहन क्या, वो तो प्रार्थना करता है कि ऐसे बार बार मुझे कष्ट आए। विपदा संता ता शश्वत तत्र तत्र जगतगुरु भवत दर्शनम स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती महारानी कह रही है बार बार आप हमें कष्ट दीजिए, क्या प्रार्थना देखिए कि बार बार हमें कष्ट दीजिए, हमें बैक पेन होना चाहिए, हमें स्पॉन्डिलाइटिस होना चाहिए, हम चाहते हैं हमें दिखाई ना दे ठीक तरह से, हमारा पेट हमेशा खराब रहे, हम ठीक तरह से चल ना पाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं हम लोग। कुंती महारानी की प्रार्थना भाव तो यही है, भाव तो यही है, कष्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा कष्ट होने पर क्या होगा, हम लोग आपका स्मरण कर पाएंगे, आपका चिंतन करेंगे। और आपका चिंतन करने का मतलब क्या है? अपुनर अपुनर भव दर्शन, दोबारा इस भव सागर का दर्शन नहीं होगा। भव दर्शनम से आपका अगर हम दर्शन कर लेंगे, आपकी लीलाओं का स्मरण होगा, तो दोबारा भव सागर का दर्शन नहीं होगा। ये लाभ होगा जब कष्ट आएगा तो। ये एक उन्नत भक्त का लक्षण है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा बुखार हो जाता है, कष्ट आता है, तो माला दिखाई नहीं देती कहां पर है। आज माला में पूरा कर नहीं पाया, खांसी हो रही थी। तो ऐसी अवस्था और ऐसी परिस्थिति में भगवान हमें डालेंगे, तैयार रहना हमें। भक्ति में जो भी गंभीर हैं उन सबको कष्ट मिलने वाला है। नए लोगों में मत प्रचार करिएगा, हम सबको कष्ट मिलने वाला है। जो भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत कष्ट मिलेगा। श्रीमद् भागवत इसका उदाहरण है। आप देख लीजिए, पांडवों को देख लीजिए, प्रहलाद महाराज को देखिए, ध्रुव महाराज को देखिए, कोई ऐसा भक्त हो जिसको कष्ट ना हुआ हो? भीष्म पितामह को देखिए, बाणों के शैया में लेटे थे। हालांकि कष्ट नहीं हुआ तो कृपा है भगवान की, लेकिन दिखाई तो ऐसे ही पड़ता है। 56 दिन भीष्म पितामह बाणों के ऊपर लेटे रहे, 56 डेज, छोटी मोटी बात नहीं है। तो इस तरह से सब भक्तों ने कष्ट उठाया, प्रभुपाद ने कष्ट उठाया, और प्रभुपाद के कई शिष्य कष्ट उठाए और उठा रहे हैं। तो क्या हम लोग बच जाएंगे? शुरू में जरूर निश्चित रूप से विज्ञापन होता है, पब्लिसिटी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहेंगे, हमारी परीक्षा होगी। जितना भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे, उतनी हमारी परीक्षा और ज्यादा क्या हो जाएगी? टफ हो जाएगी। और इन परीक्षाओं को पार करके जाना होगा। इसी को कहते हैं सहनशील होना, क्षमाशील। समय क्या है? जो व्यक्ति अपने विपक्षी के साथ सब अपराधों को सहन कर सकता है, वह क्षमावान या क्षमाशील कहलाता है। भगवान कृष्ण की क्षमाशीलता का वर्णन शिशुपाल वध में मिलता है कि किस तरह वे शिशुपाल के वध को टालते रहे। शिशुपाल चेरी राज्य के राजा थे। यद्यपि वह कृष्ण का मौसेरा भाई था, किंतु वह कृष्ण के से सदैव द्वेष रखता था। शिशुपाल ने जैसे ही मुंह खोला बचपन में, सबसे पहली बार कृष्ण को गाली दिया। इतना द्वेष, जैसे ही मुंह खोला, जब पहली आवाज निकली तो कृष्ण के नाम पे गाली दी। जब भी दोनों मिलते, शिशुपाल कृष्ण को अपमानित करने की ताक में रहता और जितना हो सकता था भद्दी भद्दी बातें करता था। कि तो महाराज युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ स्थल में जब शिशुपाल कृष्ण को गालियां बकने लगा, तो वे उस पर ध्यान न देते हुए मौन बने रहे। वास्तव में भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र जो उठाया, वो इसी कारण से उठाया कि वो पांडवों को लेकर जो है अब कृष्ण की निंदा कर रहे थे। ये पांडवों को भी देखो, पता नहीं किसको अपने साथ ले लिया है। तो जब इस तरह से जब उन्होंने कहा, तब चक्र चलाया भगवान ने। प्रत्यक्ष रूप से भगवान जो है चुप रहे। यज्ञ स्थल के कुछ लोग शिशुपाल को मार डालने के लिए उद्यत हुए, किंतु कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। वे इतने क्षमाशील थे। ऐसे कहा जाता है कि जब बादल गरजते हैं तो बलशाली सिंह अपनी घोर गर्जना से उसका उत्तर देता है। जब बादल जब गरजते हैं तो जंगल में क्या होता है? शेर भी गरजता है। तो मतलब शेर ये बताता है कि मैं डरा नहीं, तुम गरजते रहो। किंतु जब मूर्ख सियार आवाज करते हैं, सियार आवाज करते हैं जंगल में, आपने सुना होगा, ऐसा लगता है कि जैसे कोई भूत है। देखा है रात को आप कैसे गांव में भी जाएं या किसी जंगल जैसे इलाके में जाएं, तो सियार की आवाज आती है, ऐसा लगता है कि भूत आवाज निकाल रहा है। तो सिंह उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देता, शेर ध्यान भी नहीं देता है, वो बोलता रहता है ऐसे रोज रोज का काम उसका। शेर ध्यान नहीं देता है। बादल जब गरजते हैं तो दहाड़ता है शेर, वापस दहाड़ता है। श्री यमुनाचार्य श्री कृष्ण की क्षमाशीलता की प्रशंसा इन शब्दों में करते हैं। हे प्रभु रामचंद्र, आप इतने दयालु हैं, कि आपने जानकी के चुचकों पर चोंच मारने वाले कौवे को इसलिए क्षमा कर दिया क्योंकि वह आपके समक्ष नतमस्तक था। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र ने कौवे का वेश धारण करके भगवान राम की पत्नी जानकी के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। यह जगत जननी सीता का निश्चित रूप से अपमान था, अतः भगवान राम तुरंत उस कौवे को मारने के लिए उद्यत हुए, किंतु बाद में कौवा भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गया तो उन्होंने उसका अपराध क्षमा कर दिया। अपनी स्तुति में श्री यमुनाचार्य इसके आगे कहते हैं कि भगवान कृष्ण अपनी क्षमाशीलता में भगवान राम से भी बढ़कर हैं, किंतु शिशुपाल क्योंकि शिशुपाल सदैव कृष्ण का अपमान करता रहता था, एक नहीं तीन तीन जन्मों तक लगातार अपमान करता रहा। तीन जन्मों तक अपमान किया कि नहीं? पहली बार कैसे? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। और शिशुपाल तो जन्म में ही आवाज जैसी मिली उसको बोलने के लिए शुरू हुआ तब से। इससे हमें पता चलता है कि नहीं आगे क्या है, अच्छा एक नहीं तीन तीन जन्मों तक लगातार अपमान करता रहा, फिर भी कृष्ण इतने दयालु थे कि उन्होंने शिशुपाल को अपना तादात्म्य प्रदान किया। इससे हमें पता चलता है कि ब्रह्म तेज में तल्लीन होने का द्वैतवादी लक्ष्य कोई कठिन समस्या नहीं है। शिशुपाल जैसे व्यक्ति भी जो निरंतर कृष्ण से शत्रुता रखते हैं इस मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाल एक तरह से बता रहे हैं कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपने तादात्म्य प्राप्त कर लिया या ब्रह्म ज्योति में मतलब लीन हो गए, ये तो शिशुपाल जैसे जो राक्षस है उनको भी भगवान इस प्रकार की मुक्ति दे देते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है वास्तव में। इसलिए भक्तों के लिए तो इस प्रकार का तादात्म्य क्या है, नर के समान है, कैवल्यम नरकाय थे। तो यहां पर बड़ी अच्छी बात बताई है, क्षमाशील भगवान बड़े दयालु हैं, क्षमा कर देते हैं निश्चित रूप से। जैसे महाप्रभु के साथ भी जो संवाद हुआ केशव काश्मीरी का, केशव काश्मीरी आया था इसी विचार से कि मैं निमाई पंडित को हराऊंगा, लेकिन बाद में जब हार गया तो निमाई क्या देखते हैं कि सारे उनके जो मित्र हैं वो सब हंस रहे हैं केशव काश्मीरी को देखकर। तूने कहा नहीं, कोई नहीं हंसेगा। फिर जब उन्होंने अपने गलती को स्वीकार कर लिया तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उनको क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, आप क्यों नहीं कृष्ण भक्ति का प्रचार करते, अपने विद्वत्ता का उपयोग करिए, आप भगवान की सेवा में लगाइए। तो इस तरह भगवान हमेशा क्षमा कर देते हैं अपने भक्तों को, लेकिन हमें तैयार रहना होगा क्षमा मांगने के लिए, ये सबसे बड़ी बात है ना। क्योंकि जब तक हम लोग अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे तो क्षमा कैसे करेंगे भगवान। लेकिन एक है कि उनके भक्तों के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए, तब भगवान क्षमाशील नहीं है, क्योंकि वो भक्त ही फिर क्षमाशील हो सकते हैं। भक्त जो हैं भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं। ऐसे अम्बरीश महाराज को मारना चाहते थे दुर्वासा मुनि एक तरह से, लेकिन जब वैकुंठ गए तो भगवान ने क्या बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे हृदय में भक्त वास करते हैं, मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूं, इसलिए वापस जाओ अम्बरीश के पास। वैकुंठ से वापस आना पड़ा दुर्वासा मुनि को। लेकिन अम्बरीश महाराज क्या कहते हैं कि मैं तो आपके लिए इतने दिन से इंतजार कर रहा था। एक साल अम्बरीश महाराज इंतजार कर रहे थे दुर्वासा मुनि का वहां पर, और दुर्वासा मुनि की उन्होंने सेवा की। तो ये दया है, क्षमाशील, यानी कि भक्तों की अगर हम निंदा भी कर, भक्त जो है भक्तों की निंदा भी की जाती है, भक्तों की बुराई भी की जाती है, तब भी ऐसे भक्त जो है माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। जब इन भक्तों से कोई माफी मांगने जाता है शुद्ध भक्तों से, तो शुद्ध भक्त यही कहते हैं कि कौन से अपराध की बात कर रहे हो तुम, उन्हें तो याद भी नहीं होता है कि हमने कोई अपराध किया उनके प्रति, ये उनकी महानता है। जैसे अम्बरीश महाराज ने कभी अपराध लिया ही नहीं, श्रीवास पंडित ने कभी अपराध लिया ही नहीं जब गोपाल चापल ने अपराध किया, या हरदास ठाकुर ने कभी अपराध लिया ही नहीं गोपाल चक्रवर्ती ने अपराध किया। हाँ ये जो उनको बुरा लगा कि वो नाम की महिमा को कम कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रति जो अपराध उन्होंने किया हरदास ठाकुर ने, उसके बारे में कोई विचार भी नहीं किया। तो कहने का अर्थ यह है कि शुद्ध भक्त कभी भी अपराध लेते नहीं है, ये नहीं कहते हैं कि तुम जानते नहीं किसके प्रति अपराध कर रहे हो, तुम वैसा अपराध कर रहे हो, तो ऐसा शुद्ध भक्त कभी नहीं बोलते हैं। उल्टा वो यही सोचते हैं कि निश्चित रूप से मैंने कुछ पिछले जन्म में इसका बुरा किया होगा, इस कारण से ये आज मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ऐसा प्रभुपाद ने कहा। एक बार प्रभुपाद कनाडा में किसी स्कूल में प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, तो अचानक एक वहां पे व्यक्ति था, बंगाली आदमी था, वो अचानक खड़ा हुआ और बहुत अपशब्द बोलने लगा संस्था के बारे में और बहुत कुछ बोलने लगा इस तरह से। तो प्रभुपाद बिल्कुल चुपचाप सुनते रहे, प्रभुपाद के बारे में बोला उसने, लेकिन प्रभुपाद चुपचाप सुनते रहे। आसपास जो शिष्य थे वो बहुत गुस्सा हो रहे थे, प्रभुपाद ने कहा चुप रहो, कुछ बोलो नहीं। तो अगले दिन लेकिन प्रभुपाद आके उसने खुद माफी मांगी, प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आपने कुछ बोला क्यों नहीं। प्रभुपाद ने कहा शायद हो सकता है कि पिछले जन्म में मैंने इसके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया हो, इसलिए मुझे सुनना पड़ रहा है। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी भी अपराध नहीं लेते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो ये हमें ये गुण अर्जित करने हैं, इस प्रकार के गुण अर्जित कर रहे हैं। यानी कहने का अर्थ है, कोई भक्त हमें परेशान कर रहा है या कोई भक्त लगता है कि हमारी निंदा कर रहा है, यहां तक कि हमें अपमानित कर रहा है या अपयश फैला रहा है, बदनाम कर रहा है, तब भी जो है भक्त इतने दयालु होते हैं कि वो क्षमा कर देते हैं, ये महानता है। इसको कहते हैं करुणा, दिदिक्षुवा करुण कारुणिका सुहृद सर्वदेना, अजात शत्रु शांत साधु साधु भूषणम। किसी को शत्रु नहीं बनाते हैं भक्त, सबको मित्र बनाते हैं, शत्रु के ऊपर भी दया करते हैं, शत्रु को भी क्षमा कर देते हैं। ऐसा हमने कई बार देखा, जैसे हमारे महाराज जी हैं, क्षमा कर देते हैं। ये क्षमा करने की जो भावना है, दया की भावना है, ये बहुत बड़ा लक्षण है उन्नत वैष्णों का, और खासकर जो मध्यम अधिकारी भक्त हैं उनमें पाया जाता है, प्राकृत भक्तों में नहीं। प्राकृत भक्त जो है वो क्रोधित होते हैं और मानसिक युद्ध तो चलता ही रहता है, कभी कभी शारीरिक युद्ध भी हो जाता है। क्षमा का मतलब कुछ नहीं होता उसमें। तो क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने आप को भक्त मानते नहीं, प्राकृत भक्त के साथ समस्या है कि वो अपने आप को भक्त मानता है, इसी वजह से हमेशा युद्ध चलता रहता है। तो ये क्षमा की भावना बनी रहनी चाहिए, जैसे यहां पर बताया। गंभीर, जो व्यक्ति किसी से अपने मन की बात नहीं कहता अथवा जिसकी मन की गति तथा कार्य योजना को समझना कठिन हो वह गंभीर कहलाता है। जब ब्रह्मा के द्वारा कृष्ण के प्रति अपराध हो चुका था, ब्रह्मा ने उनसे क्षमा याचना की, उन्होंने उत्तम स्तुति की, किंतु अंत तक वह ये नहीं समझ पाए कि कृष्ण प्रसन्न हुए या प्रसन्न बने रहे। जब ब्रह्मा जी इतनी प्रार्थना कर रहे थे, लगभग 40 श्लोक है ना ब्रह्मा जी स्तुति की, हाँ भागवत के दशम स्कंद में 14 अध्याय में, तो इन 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी स्तुति की, लेकिन भगवान ने कोई संकेत भी नहीं दिया कि उनको अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, वो चुपचाप खड़े रहे। एक तरह से ब्रह्मा जी को ये लगा कि मैं शायद लीला में बाधा डाल रहा हूं, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे, अच्छा है कि मैं यहां से चलूं। फिर ब्रह्मा जी चले गए बाद में वहां से। और यहां आगे बता रहे हैं, दूसरे शब्दों में कृष्ण इतने गंभीर थे कि उन्होंने ब्रह्मा की स्तुति पर ध्यान नहीं दिया। कृष्ण की गंभीरता का दूसरा उदाहरण राधारानी के प्रति उनके प्रेम व्यापार का है। वे राधारानी के प्रति अपने प्रेम के विषय में सदैव अत्यंत मौन रहते थे, यहां तक कि उनके बड़े भाई एवं चिर संगी बलदेव तक उनके मनोभावों को उनकी गंभीरता के कारण नहीं समझ पाए। तो कृष्ण बड़े गंभीर हैं। तो गंभीर का क्या मतलब होता है कि बड़ा कठिन होता है समझना कि व्यक्ति अंदर क्या सोच रहा है, क्योंकि कोई रिएक्शन नजर नहीं आता है, व्यक्ति खुश है या दुखी है पता नहीं चलता है, बिल्कुल चुप रहता है, ग्रेव रहता है। जैसे प्रभुपाद बड़े ग्रेव रहते थे, आप देखेंगे प्रभुपाद को आचार्य सीरीज में, प्रभुपाद का आप चेहरा देखेंगे ना तो ऐसा लगता है कि प्रभुपाद के चेहरे में कोई इस प्रकार का संकेत नहीं है कि वो खुश है या दुखी है। वो जब बोलते हैं तो शायद थोड़ा बहुत पता चलता है, अन्यथा लगता ही नहीं कुछ, ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे एक बिल्कुल स्थिर हो, जैसे स्थिरता की बात कर रहे थे हम, गंभीर एकदम, ग्रेविटी आप देख सकते हैं, डेप्थ देख सकते हैं आप। तो प्रभुपाद ये कहते थे कि वास्तव में जब वैष्णव होते हैं वैसे ही होते हैं, जितना आप अंदर जाओगे उतना समुद्र जो है वो शांत होता है। इसी प्रकार से जो वैष्णव होते हैं वो बड़े गंभीर होते हैं, इसलिए वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए, वैष्णव को जानना बड़ा कठिन है उनकी क्रिया मुद्रा को। इसलिए भारी कार्यकलाप देखकर हमें कोई फैसला नहीं कर लेना चाहिए। कि अंतकरण से उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। इस कारण से गंभीरता बनी रहती है। गंभीरता कैसे बनी रहेगी? जब उद्देश्य हमारा एक होगा, हमारा लक्ष्य एक होगा, तब गंभीरता बनेगी। नहीं तो अगर हमारा लक्ष्य अगर मिश्रित है तो फिर गंभीरता का कोई मतलब ही नहीं उठता है। इसलिए हम किस उद्देश्य से आए हैं और कहां जाना चाहते हैं यह स्पष्ट होना चाहिए, तब हम लोग गंभीर होंगे। और उसके लिए क्या क्या करना आवश्यक है यह जानना बहुत जरूरी है गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से। तो इस तरह से गंभीरता बढ़ती है। गंभीरता बढ़ती है साधना से, गंभीरता बढ़ती है स्वाध्याय से, गंभीरता बढ़ती है उन्नत वैष्णों का संग करने से, गंभीरता बढ़ती है हरिनाम ध्यान पूर्वक जप करने से। तो इससे सब गंभीरता बढ़ती है। और जितने हम गंभीर होंगे उतना भी कृष्ण भी हमारे लिए गंभीर रहेंगे। आत्मतुष्ट धृतिमान, जो व्यक्ति अपने में पूरी तरह संतुष्ट रहता है, जिसमें कोई लालसा नहीं होती, जो किसी विपदा के उत्पन्न होने पर भी विचलित नहीं होता, वह धृतिमान कहलाता है। कृष्ण की आत्मतुष्टि का एक उदाहरण तब दिखा जब अर्जुन तथा भीम के साथ मगध के दुर्जय राजा जरासंध को ललकारने गए थे और फिर जरासंध के वध का श्रेय स्वयं न लेकर भीम को प्रदान किया था। इससे यह समझा जा सकता है कि कृष्ण को यश की तनिक भी परवाह नहीं रहते, यद्यपि उनसे बढ़कर यशस्वी अन्य कोई नहीं है। उनके विचलित न होने का एक उदाहरण तब मिलता है जब शिशुपाल उन्हें गाली बक रहा था। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ स्थल पर एकत्र सारे राजा तथा ब्राह्मण शुद्ध हो गए और तुरंत उत्तम स्तुतियों द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते थे, किंतु इन राजाओं तथा ब्राह्मणों को कृष्ण के मुख पर किसी प्रकार का शोभ दृष्टिगोचर नहीं हुआ। शिशुपाल ने गाली दी, बाकी लोगों ने प्रशंसा की, लेकिन कृष्ण जो है वैसे के वैसे ही थे। क्योंकि आत्मतुष्ट धृतिमान, यानी कि यश मिले ना मिले कोई अंतर नहीं पड़ता है, और ना ही यश के लिए आतुर होते हैं कि यश और किसी को ना मिल जाए। तो इस प्रकार की धारणा नहीं रहती भगवान। हालांकि सबसे यशस्वी व्यक्ति हैं, भगवान को यश की चिंता नहीं रहती, और यश आता भी है तो उसको यश को तुरंत ही स्थानांतरित कर देते हैं, किसी और को दे देते हैं। ये वैष्णव में भी होता है इस तरह से। जब वैष्णव का गुणगान किया जाता है, सफलता प्राप्त करते हैं, वो किसी और को श्रेय दे देते हैं, वैष्णव को श्रेय दे देते हैं, गुरु को श्रेय दे देते हैं, भगवान को श्रेय दे देते हैं, जिस तरह से प्रभुपाद ने किया और वह अन्य वैष्णव भी करते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत बहुत अच्छा गुण है कि जब भी यश हमें प्राप्त होता है तो हमें ये करना चाहिए, उस यश से आसक्त नहीं होना चाहिए। भक्तों ठाकुर ने कहा है सभी अनर्थों का जो मूल कारण है वो यश कमाने की इच्छा, और यश कमाने की इच्छा हमारे मन से तभी निकल सकती है जब हम वैष्णों की सेवा करते हैं। वैष्णों की सेवा करने से वैष्णव जो है इस यश को हृदय से बाहर निकाल देते हैं, जो यश कमाने की इच्छा है उसको बाहर फेंक देते हैं, और हमें एहसास कराते हैं कि वास्तव में ये यश अगर प्राप्त भी हुआ है, ये भी कृष्ण के द्वारा दिया गया है, ये भी गुरु के द्वारा दिया गया है, इसको इससे आसक्त मत हो, क्योंकि आज अगर शेर हो तो कल हो सकता है कि कल चूहा बनना पड़े। आप जानते ना कहानी, तो जानते ही आप पुनर्मुशी को बाबा। तो चूहा शेर बन गया और अपने ही गुरु को खाने के लिए तैयार हो गया, तो उन्होंने क्या बोला, पुनर्मुशी को बाबा, जाओ फिर से आप क्या बन जाओ, चूहे बन जाओ, बहुत हो गया। तो इस प्रकार हमें सावधान और सतर्क रहना चाहिए कि कोई भी सफलता हमें प्राप्त होती है तो हम ये ना सोचे कि हमने ऐसा किया है, हमारे कारण ऐसा हुआ है, बल्कि सारा श्रेय हमें गुरु परंपरा को दे देना चाहिए। उसी में हम लोग, क्योंकि ये सब क्यों ऐसा कर रहे हैं, कारण क्या है, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य यश कमाना नहीं है, जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। इस कारण से जब हम लक्ष्य को भूल जाते हैं तब हम मार से भटक जाते हैं, और जैसे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि इन शाखाओं के साथ उप शाखाएं जागृत हो जाती हैं, लाभ पूजा प्रतिष्ठा की उप शाखा, यानी कि फिर उप शाखाओं में हम लोग जड़ डालने लगते हैं। भक्ति लता बीज के साथ एक जंगली पौधा भी उगने लगता है, और भक्ति लता बीज में जल नहीं डालते हैं और हम जंगली पौधे में जल डालते हैं, वो जंगली पौधा बढ़ता है और भक्ति लता बीज को क्या करता है, दबा देता है। आए थे हम लोग उस देश से, लेकिन ठीक तरह से क्योंकि संग नहीं किया, ठीक तरह से सेवा नहीं की, ठीक तरह से सिद्धांतों को ठीक ठीक समझा नहीं, तो मार्ग से भटक जाते हैं कई बार। इसलिए इन शिक्षाओं को रोज सुनना चाहिए। महाप्रभु जब ने प्रार्थना की, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविता मा जगदीश कामे, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति अहितुकी त्वयि। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जन्म जन्मांतर तक हम केवल भक्ति करें, सेवा करें, मार्ग से भटके नहीं। जिस उद्देश्य से आए थे उसी उद्देश्य से हम रहें, क्योंकि आज अगर यश मिल रहा है तो कल आपको यश मिलेगा, और आज अगर आपको आपको ये बदनामी हो रही है आपकी, तो कल लोग आपका ही गुणगान करेंगे। यानी कि हमें किसी के गुणगान से या किसी के अपमान से प्रभावित नहीं होना है। किसी की जीवा के हम गुलाम हैं, हमें बनना नहीं है। जीवा का गुलाम मतलब जानते क्या है, कि दूसरे की जीवा का गुलाम बन रहे हैं हम, क्योंकि मेरा चरित्र जो है आपके प्रशंसा के ऊपर निर्भर करता है, मेरा चरित्र आपके निंदा के ऊपर निर्भर करता है। यानी मेरा अपना कोई चरित्र नहीं है। आप जो प्रशंसा करेंगे तो मैं अच्छा हूं, आप निंदा करेंगे तो मैं बुरा हूं। ये भावना हमें निकाल लेनी चाहिए मन से, और खुद हमें जो है इस बात पे विश्वास श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए एक बार हमारे गुरु महाराज ने ये बोला कि कोई कुछ कहते हैं ये मत सोचो, जब मैं कुछ कहूं तब विचार करना। क्योंकि कई लोग आज प्रशंसा कर रहे हैं, बद्ध जीव का क्या है, वो कभी तारीफ करेगा कभी बुराई करेगा, लेकिन गुरु जो है वो बद्ध अवस्था में नहीं है, द्वंद नहीं है उनके। तो वो जब कहेंगे तो वो बात बड़ी गंभीरता से हमें लेनी चाहिए, उस बात को हमें समझना चाहिए। हाँ, वास्तव में मेरे अंदर कोई दोष है। और अगर गुरु प्रशंसा करते हैं तो ये तब भी, लेकिन तब ये नहीं सोचना चाहिए गुरु मेरी प्रशंसा करें तो वास्तव में ये अच्छाई मेरे अंदर है, और ज्यादा हम लोग फूल जाएं कि गुरु ने आज मेरी तारीफ की है। इसलिए इस कारण से गुरु जो है ज्यादा प्रशंसा नहीं करते हैं शिष्य की। तो इन बातों को बड़ा ध्यान से हमें समझना चाहिए कि ये गुण हमें तभी प्राप्त हो सकते हैं, तभी इस गुणों को दोबारा जागृत कर सकते हैं, जब हमारा लक्ष्य जो है जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम हो। जब हम कृष्ण के लिए पूर्ण तरह से शरणागत होंगे ये सोच के कि कृष्ण प्रेम हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो ये धीरे धीरे हम देखेंगे सारे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। कृष्ण ही की शरण। हरे कृष्ण। यहीं पे विराम देते हैं आज के लिए। क्या समय है, कोई प्रश्न है किसी का, क्या अभी तक चर्चा किया। हरे कृष्ण। मिलता जुलता है बहुत। जैसे सूर्य के ऊपर अगर थूके कोई तो सूर्य को प्रभाव पड़ेगा कुछ, अपने ऊपर ही आएगा ना। तो इसी तरह से कोई कृष्ण को गाली देता है तो उनको क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए तो राजसूय यज्ञ में वो गाली दे रहा है शिशुपाल, कोई प्रशंसा कर रहा है तो उनको क्या फर्क पड़ेगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि भक्त उनका गुणगान कर रहे हैं, एक जो ना करें तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे कई सियार जो है चिल्ला रहे हैं जंगल में, चिल्ला ले दो। तो इस तरह से बात को समझना चाहिए। हरे कृष्ण। हाँ ये अच्छा है, लेकिन इसको आप खुद ही पढ़े तो अच्छा है। अब आप अपने लिए है। हरे कृष्ण। रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा लिखे थे मन शिक्षा से, क्या है हाँ लगा सकते हैं। अच्छा ठीक है। हरे कृष्ण। भक्ति साहब सिंधु की जय। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय।